सभी दोस्तों को हमारा यानी नरेंद्र तिवारी
और अंजलि जोशी का प्यार भरा नमस्कार
और सभी सुनने वालों को हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
जल्दी समय बीत जाता है और देखते ही देखते नया साल, नया जोश, नई उमंग और नया उत्साह लिए आ खड़ा होता है।
सही कहा अंजलि, नया साल, नया महीना, नया सप्ताह, नया दिन और नई तारीख, यानी कि सब कुछ नया नया सा।
और नए साल में बहुत लोग नई नई योजनाएं बनाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें छोड़नी है और क्या क्या नया नया करना है।
अच्छा अंजलि, मेरे पास एक आइडिया है।
क्या नरेन?
देखो, वैसे तो हम हर बार अपने श्रोताओं को नई जानकारियां देते हैं।
हाँ?
साथ ही साथ अगर हमारे श्रोताओं के पास प्रवास से जुड़ा कोई भी सवाल है तो वो हमें अपने सवाल हमारे नंबर 9197176782 पर SMS करते हैं।
बिल्कुल सही नरेन।
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज नए साल का मौका है तो जानकारी भी नए काम के बारे में होनी चाहिए।
नए काम के बारे में?
अरे भाई, नए काम से मेरा मतलब है नए बिजनेस के बारे में, और वो भी खास तौर से महिलाओं के लिए।
वाह नरेन, मान गए, हमारी महिला श्रोताओं के लिए नए साल का इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है।
और साथ ही साथ हम लोगों की राय भी जानेंगे।
किस बारे में नरेन?
अरे इसी बारे में कि क्या महिलाओं के लिए पुरुषों के मुकाबले बिजनेस करना मुश्किल है।
और साथ ही नरेन, हम एक ऐसी महिला से भी तो अपने श्रोताओं को मिलवाएंगे ना, जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
बिल्कुल सही कहा अंजलि तुमने। लेकिन उससे पहले हम और आप सभी मिलकर सुनेंगे धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, कविता मुंबई से गांव में अपने घर वापस आती है। कविता के पिता पहले तो उस पर बहुत नाराज होते हैं, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वो कविता को माफ कर देते हैं। मधु कविता से मिलती है और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जानकारी लेती है। इधर दिल्ली में चंदर और गजेंद्र भी अपनी नौकरी से काफी खुश हैं और वो बैंक में बचत खाता खुलवाने के बारे में सोचते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
ए गज्जू, टिकट मिल गया क्या?
अरे यार, टिकट तो मिल गया लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत भीड़ थी भाई।
चल तो अंदर चलते हैं यार, फिल्म शुरू होने वाली होगी।
अबे रुक जा यार, अभी 15 मिनट बाकी हैं फिल्म शुरू होने में।
अच्छा
हाँ, चल जरा बाहर टहल कर आते हैं।
चल ठीक है।
अबे देखना यार, सब कैसे अपनी अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने आए हैं और एक हम है यार।
अरे अपनी अपनी किस्मत है गज्जू, हम यहाँ शहर में धक्के खाकर कुछ कमा ले वही बहुत है।
उमेश, फिल्म देखने के बाद हम कहाँ जाएंगे बताओ ना।
जहाँ तुम कहोगी मेरी जान।
झूठे, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे वादा किया था कि मुझे इंडिया गेट लेकर चलोगे।
तो इंडिया गेट चलते हैं।
तुम्हारा नाम उमेश नहीं धोखेबाज होना चाहिए था।
उमेश? अरे ये तो उमेश है।
उमेश कौन?
अरे वही मेरा दोस्त। एक मिनट रुक, मैं अभी आया।
अरे कहाँ चला, सुन तो। अरे चंदर, अरे सुन तो यार। अरे यार, अब जब फिल्म शुरू होने वाली है तो भाई साहब भाग लिए यहाँ से।
ओ उमेश।
अरे चंदर, तू यहाँ फिल्म देखने आया है क्या? अरे ऐसे क्या देख रहा है? ओह समझ गया, ये चंपा है और ये चंदा।
हाय।
नमस्ते।
ये तुम्हारा दोस्त है उमेश?
हाँ दोस्त ही समझ लो।
चिकना है, दिल तो करता है आज इसी के साथ इंडिया गेट जाऊं।
और सुना चंदर, क्या हाल है? अच्छा उस दिन तुझे चिट्ठी तो मिल गई थी ना? वो क्या है ना, तुझे तो होश था नहीं, इसीलिए मैं वो चिट्ठी तेरी जेब में रखकर चला गया था।
हाँ मिल गई थी।
वैसे उस रात मजा तो खूब आया होगा तुझे, अगर कहे तो आज रात फिर चलें?
नहीं, मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि तू भी ऐसी जगहों पर मत जाया कर।
अरे मैं तुझे दिल्ली लेकर आया, तुझे दिल्ली में रहना सिखाया, और अब तू मुझे ही सिखाने लगा। चल अभी मेरा मूड खराब मत कर, मैं यहाँ बहुत अच्छे मूड से फिल्म देखने आया हूँ
इनके साथ।
ओ उमेश, शायद इसे तुमसे जलन हो रही है।
तुम सही कहती हो चंपा।
उमेश चलो ना, कहीं इसके चक्कर से फिल्म ना निकल जाए।
अच्छा भाई चंदर, मैं चलता हूँ।
बड़ा अजीब दोस्त है तुम्हारा।
वो गांव का है ना इसलिए।
चंदर कौन था ये, तू जानता है इसे?
हाँ यार जानता हूँ। चल छोड़ ना, अंदर चलते हैं, फिल्म शुरू होने वाली है।
हाँ चल यार।
ये मेरी पेंसिल है।
नहीं ये मेरी है।
छोड़ दे, ये पेंसिल मेरी है।
अरे क्या हुआ, मेरी बेटी रो क्यों रही है?
पिताजी, मैं जी
तो क्या हुआ, हम अपनी बेटी के लिए नई पेंसिल ला देंगे।
आप कैसे लाओगे पिताजी, आपके पास तो पैसे भी नहीं है।
क्यों?
क्योंकि आप तो कोई काम नहीं करते।
ऐसा तुमसे किसने कहा?
दादी कहती है।
नहीं बेटा, अब आपके पिताजी खूब काम करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे।
वो कैसे?
क्योंकि आपके पिताजी को नौकरी मिल गई है।
सच्ची?
सच्ची।
क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में?
माँ, पिताजी कह रहे हैं कि उनको नई नौकरी मिल गई है और अब वो खूब सारे पैसे लाएंगे।
क्यों जी, आपको सचमुच कोई नौकरी मिल गई है?
हाँ मीरा।
कहाँ पर?
ऋषिकेश में।
और काम क्या करना होगा?
ड्राइवरी का काम है। वो विदेशों से जो लोग आते हैं ना, उनको यहाँ के तीर्थ स्थान घुमाने हैं गाड़ी में।
अच्छा।
और मुझे परसों ही यहाँ से निकलना होगा।
इतनी जल्दी?
काम करना है तो जाना तो होगा ना।
वो तो है।
देखना मीरा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
चंदर
जी,
यहाँ साइन करो।
यहाँ?
हाँ
जी, ये लीजिए।
ठीक है, देखो 1500 एडवांस काट कर 2500 बनते हैं तुम्हारे। लो गिन लो।
जी ठीक है।
हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट।
सच कह रही हूँ बड़ी दीदी, अगर हम ऐसे ही काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब महीने में पूरी 500 जूस की बोतलें तैयार करने लगेंगी।
शांता, बात तो तू 16 आने सच्ची कह रही है, पर मुझे लगता है कि अभी भी हमारे समूह में एक मेहनती महिला की कसर है। अगर कहीं से एक महिला और हमारे साथ जुड़ जाए तो ये कामना भी पूरी हो जाएगी।
नीलम दीदी, नीलम दीदी।
अरे बेटी, नीलम दीदी अभी आ रही है, पर ये तो बता तू कौन है?
जी मेरा नाम मधु है, वो आज नया काम मिलने वाला था ना, इसलिए आई हूँ। आप लोगों से पहले कभी मिली नहीं।
हम सब दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। ये है शांता, ये निर्मला, ये पार्वती, सावित्री, सत्तो और मैं हूँ सरला। तू चाहे तो मुझे बड़ी दीदी बुला सकती है।
बड़ी दीदी?
हाँ, ये सभी मुझे बड़ी दीदी ही बुलाती हैं। वैसे कितने दिनों से कर रही है ये काम?
अभी कुछ ही दिन हुए शुरू किए।
फिर भी महीने में कितना काम कर लेती है?
अभी तो 10 बोतलें ही तैयार कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं 50 बोतलें तक तैयार कर सकती हूँ।
अरे बेटी, तेरी बड़ी दीदी ने जमाना देखा है, ऐसे हवा में बातें नहीं करते।
सच में बना सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अभी बोतलें घर से यहाँ तक लाने ले जाने का कोई साधन नहीं है, और फिर मेरे पास इतने बड़े बर्तन भी नहीं है जिसमें इतना जूस तैयार किया जा सके।
कोशिश कर कि थोड़ा ज्यादा काम कर सके, और जब ज्यादा काम करेगी तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। उनमें से कुछ पैसे बचा करके बड़े बर्तन खरीद लेना।
जी
बड़ी दीदी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। देखो ये लड़की मेहनती है और समझदार भी लगती है, क्यों ना हम इसको अपने सहायता समूह की सदस्य बना ले, और फिर तो हम 9 से 10 हो जाएंगी।
कह तो तू सही रही है शांता, क्यों मधु बेटी, बनेगी मेरी सहायता समूह की सदस्य?
लेकिन मेरे पास आपके समूह की सदस्य बनने के लिए पैसे नहीं हैं।
अरे तो तुझसे पैसे मांगे किसने हैं? तू तो बस हाँ कर दे।
जी अगर ऐसा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।
तो लो भाई, आज से मधु हमारे समूह की नई सदस्य है और अब ये हमारे साथ ही काम करेगी।
ये दो चिकन टिक्का, एक पनीर मसाला और एक नान, चल जल्दी बाहर टेबल पे लगा।
अरे नारायण, तुमने चंद्र को देखा क्या?
मेरे पास उसको देखने के अलावा और भी काम है।
अरे नाराज क्यों होते हो गुरु? भाई मैंने सोचा एक कुक को दूसरे कुक के बारे में पता होगा।
ओ, मैं कुक नहीं, हेड कुक हूँ।
ओहो, माफ करना हेड कुक साहब, मैं चंद्र को खुद ही ढूंढ लूंगा यार।
अरे गजेंद्र।
अरे कहाँ था यार तू, मैं तुझी को ढूंढ रहा था।
अरे यार मैं अपनी तनख्वाह लेने गया था।
अच्छा, और मैं तुझे ये बताने आया था कि जाकर अपनी पेमेंट ले ले।
अच्छा सुन गजेंद्र।
हाँ बोल।
यार ये रोज वही नीली पीली शर्ट्स पहन पहन के मैं बोर हो गया हूँ।
यार बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा काम करते हैं, किसी दिन गुड़गांव चलते हैं, अभी वहाँ कई शॉपिंग मॉल्स हैं।
पागल हो गया क्या यार, वहाँ तो बहुत महंगे कपड़े मिलते होंगे ना।
अबे कपड़े खरीदने किसे हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे, और वैसे भी वहाँ आधे से ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं, खरीदारी करने नहीं।
और मेरे कपड़ों का क्या होगा?
अबे यही किसी अच्छी सी मार्केट से खरीद लेंगे यार।
यार यहाँ कौन सी मार्केट जाएंगे?
सरोजनी नगर मार्केट।
कौन सी मार्केट?
अरे एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या, सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे अच्छी और सस्ती मार्केट वही है, मैं भी वहीं जाता हूँ।
अबे हाँ
यार गज्जू, तो फिर तेरा पहले गुड़गांव और फिर सरोजनी नगर मार्केट, ठीक है?
नरेन, तुमने आज के धारावाहिक में एक बात नोट की?
कौन सी बात?
सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है।
मतलब?
मतलब देखो ना, हरेंद्र को नई नौकरी मिल गई, मधु स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गई और चंदर को उसकी पहली तनख्वाह मिल गई।
वाकई अंजलि, नए साल का मौका है और हम तो चाहते ही ये हैं कि नया साल हमारे सभी प्रवासी दोस्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए।
वैसे नरेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें फोर्ट फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस को भी शुभकामनाएं देनी चाहिए?
बिल्कुल, आखिर जब चलें शहर की ओर कार्यक्रम इन्हीं दोनों संस्थाओं के वित्तीय सहयोग से ही तो आइडियोजिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो फोर्ट फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस को भी हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब बात करते हैं नए बिजनेस के बारे में। क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए अपना बिजनेस करना मुश्किल है?
आइए जानते हैं इस विषय पर क्या प्रतिक्रियाएं रही, जिन्हें लोगों से बात करके जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने।
औरतों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए मुश्किल है, तो इसलिए है क्योंकि उन्हें मनी प्रॉब्लम भी होती है। दूसरा, इन लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हें जो भी व्यवसाय शुरू करती हैं उनके बारे में उनको जानकारी चाहिए होता है। अगर उस व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं जानती तो कोई भी व्यवसाय अपना नहीं कर सकती हैं। और व्यवसाय चलाने के लिए अकेले उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
मेरे हिसाब से तो एक औरत को बिना आदमी के व्यवसाय चलाना मुश्किल है, क्योंकि एक औरत घर में बैठ के दुकान तो कर सकती है, मगर बाहर की मार्केटिंग का काम और माल, जहाँ से माल उठाना, वहाँ की पेमेंट वूमेंट करना, हिसाब करना, थोड़ा औरत घबराई जाती है। इसीलिए हर कहीं पे औरत को आदमी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए औरत बिना आदमी के व्यवसाय नहीं कर सकती है, यही मेरा कहना है।
उनके लिए अपना बिजनेस चलाना मुश्किल है, क्योंकि वो एक तो पहली बात कि उनको में ज़्यादा बिजनेस के प्रति जज्बा नहीं होता, और दूसरी बात कि उनमें मार्केटिंग भी वो ढंग से नहीं कर पाएंगी। अगर मार्केटिंग वो करती भी हैं तो अपने फैमिली को नहीं देख पाएंगी ढंग से, और मतलब बहुत सारी उनको दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी।
नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक खुद का पार्लर चलाती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वह सहनशीलता है जो मैं अपने पैरों पर खड़ी रह सकूँ, ताकि ज़िंदगी में मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़े। आज की दुनिया में आधे से ज़्यादा औरतें अपना खुद का व्यवसाय करती हैं या तो जॉब करती हैं, तो मेरे हिसाब से हर उस महिला के अंदर यह जज्बा होना चाहिए जो कि वो दुनिया में आगे बढ़ सके।
अंजलि, वैसे चाहे कोई कुछ भी कहे, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बस मन में विश्वास होना चाहिए और फिर देखो इंसान क्या नहीं कर सकता।
बिल्कुल, और अगर यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए मुंबई की सीमा भट्ट से, जो आज कामयाबी के साथ अपनी दवाइयों की दुकान चला रही हैं।
आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम करती हैं?
जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ और दुकान चलाती हूँ, मेडिकल शॉप, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, घर बार भी देखती हूँ।
तो आप ये काम कब से कर रही हैं?
6-7 साल हो गए होंगे।
इस व्यवसाय की शुरुआती में महिला होने के नाते आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?
ऐसे कुछ खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में सब लोग सोचते थे कि हाँ ये लेडी है, इसे क्या दवाई मांगे या इसे क्या ये दिखाएं नहीं दिखाएं, तो लोग थोड़ा झिझकते थे। अब इतने साल काम करते करते हो गए हैं तो अब लोग जानने लगे हैं कि हाँ भाई ये भी काम करती है, इसे भी कुछ पता है, नॉलेज है।
यदि कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो आप उनको क्या राय देंगी?
मैं यही राय देना चाहूँगी कि भले ही फाइनेंशियली वो लोग अच्छे नहीं हो, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात शादीशुदा हो तो उनके फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी आता है, क्योंकि घर में माहौल ऐसा हो तो बाहर आप जंग जीतने जा सकते हैं।
अंजलि, चंदर की कहानी से पता चलता है कि कई बार गलत दोस्तों की संगत में हम बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं।
जैसे?
जैसे शराब या धूम्रपान जैसी हानिकारक आदतों को ग्रहण कर लेना।
हाँ, लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों को मना कर सकते हो।
बात तो तुमने ठीक कही अंजलि, मगर उसके लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा अवस्था में ऐसी चीजों को करने की लालसा भी अधिक होती है और संगत का दबाव भी ज्यादा होता है। दोस्तों का साथ न देने पर मजाक भी उड़ाया जाता है, इन सब से निपटने के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
तो
मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे दोस्तों को मना भी कर दिया जाए और जो मना कर रहा है उसका मजाक भी ना बने।
नरेन, मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिनके पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर होगा।
और वो है कौन?
अरे, अपने भैजी।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात को छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन, कहो भाई कैसे याद किया आज?
भैजी, मेरे कुछ दोस्तों की समस्या है, और वैसे ये समस्या मेरे ही दोस्तों की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये समस्या है।
अरे भाई पहेलियां मत बुझाओ, समस्या तो बताओ।
भैजी, कई बार क्या होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे दोस्त को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, जैसे कि धूम्रपान करने या फिर किसी नशीले पदार्थ के इस्तेमाल के लिए। तो भैजी, ऐसे दोस्तों को किस प्रकार मना किया जाए कि उन्हें बुरा भी ना लगे और आपका मजाक भी ना बने?
नरेन, यहाँ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और शायद उसमें तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा।
जी भैजी, पूछिए।
जरा ध्यान से सोचकर बताओ कि दोस्ती का मतलब क्या होता है।
भैजी, मैं बताऊं?
हाँ अंजलि, बताओ।
भैजी, मेरे ख्याल में जब लोग एक दूसरे को समझने लगें, एक दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकार करने लगें और बुराइयों को कम करने की कोशिश करें, तो वो दोस्ती कहलाती है।
बिल्कुल सही कहा अंजलि तुमने। अगर दोस्ती का मतलब पार्टियों में जाना, साथ में बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन करना और उनके इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे को मजबूर करना या फिर कोई और गलत काम करने के लिए मजबूर करना है, तो मेरी नज़र में तो ये दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है।
जी भैजी।
और जहाँ तक दोस्तों को मना करने की बात है, इसके लिए लोगों को चाहिए कि वो साफ तौर पर अपने दोस्त को मना करें कि वो किसी भी गलत काम में उनका साथ कतई नहीं देंगे, फिर चाहे वो गलत काम छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का।
मगर भैजी, कई बार कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि दोस्तों को मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो चलो तुम्हारी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारे दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, अब तुम पीते नहीं, और तुम्हारे दोस्त तुम्हें पीने के लिए उकसा रहे हैं, कह रहे हैं क्या नरेन एक कश लगा लो।
हाँ भैजी, ऐसा ही होता है।
तो तुम सीधे से कहो भाई कि मैं सिगरेट नहीं पीता, इससे शरीर का नुकसान होता है।
हाँ कह तो सकता हूँ, पर
फिर दूसरा दोस्त कहता है भाई ये तो नहीं पिएगा, ये तो अपनी बीवी से डरता है, और सब हंसते हैं।
हाँ मैंने कहा था ना, वो ऐसे ही ताने देते हैं।
तो तुम भी तो उल्टा ताना दे सकते हो, तुम कह सकते हो डरता नहीं हूँ, उसे प्यार करता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते, कैंसर को बुलावा देते हो, तो इसमें मैं क्या करूँ? पर सिगरेट तो मैं कतई नहीं पीऊंगा। और हो सकता है दूसरा दोस्त कहे पी ले नरेन, एक सिगरेट से कुछ नहीं होता, तो तुम कह सकते हो भैया एक सिगरेट से ही आदत शुरू होती है और फिर आदत छोड़ने के लिए बहुत रोना पड़ता है।
सही कहा भैजी।
और अगर हाजिर जवाब नहीं हो सकते तो उस समय उन सबसे दूर चले जाओ, कह दो कि भाई मुझे कुछ काम करना है, फिर मिलूंगा।
तो दोस्तों, सुना आपने, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों के दबाव से बचे रहने के। हमें उम्मीद है कि आपको भी भैजी की बातें जरूर समझ आई होंगी और आप इन बातों पर जरूर गौर करेंगे। भैजी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चल दो मेरी पूनमा मसूरी जोला घूमण, चल दो मेरी पूनमा मसूरी जोला घूमण, होटल मारो लादून, होटल मा खोला दून, होटल मारो लादून, होटल मा खोला दून, आई लव यू, आई लव यू पूनमा मसूरी जोला घूमण, आई लव यू पूनमा मसूरी जोला घूमण,
आई लव यू मसूरी जोला घूमना, आई लव यू पीस मा मसूरी जोला घूमना, आई लव यू पीस मा मसूरी जोला घूमना, आई लव यू पीस मा। मसूरी जोला घूमना आई लव यू पीस मा मसूरी जोला घूमना आई लव यू पीस मा मसूरी जोला घूमना आई लव यू पीस मा मसूरी जोला घूमना।
और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी काम की बात की तरफ।
नरेन वैसे एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा से ही प्रेजेंटर बनना चाहते थे?
अरे नहीं यार, मैं तो गाइड बनना चाहता था, गलती से प्रेजेंटर बन गया।
वैसे गाइड बन जाते तो टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कि पर्यटन से जुड़े उद्योग में काफी तरक्की कर लेते।
मतलब?
मतलब पर्यटन उद्योग में नौकरी के लिए बहुत सारे अवसर हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यटन निदेशालयों और पर्यटन विभाग में।
लेकिन यहाँ क्या काम मिल सकता है?
यहाँ आप अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी, टूरिस्ट गाइड आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और क्या क्या संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में?
निजी क्षेत्रों जैसे कि ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कार्गो कंपनीज में भी लोगों की काफी मांग है। यहाँ तक कि लोग कुछ वर्षों का अनुभव प्राप्त करने के बाद अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।
भाई अंजलि, आज तो तुम काफी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि पर्यटन उद्योग में ड्राइवर्स का भविष्य कैसा है?
ड्राइवर्स का? भाई उनकी तो बड़ी मांग है।
वो कैसे?
अब देखो ना, चाहे टूरिस्ट बसों को चलाने का काम हो या फिर कार अथवा टैक्सी चलाने की बात हो, ड्राइवर की जरूरत तो सभी जगह पड़ती है। भाई इसके लिए जरूरी है कि जो लोग ड्राइवर बनना चाहते हैं उनको ड्राइविंग की पूरी जानकारी हो, साथ ही साथ उन्हें ट्रैफिक के सभी नियमों का भी ज्ञान हो। और इसके लिए जरूरी है कि वो ड्राइविंग किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ही सीखें। एक ऐसा ड्राइविंग स्कूल जिसका नाम RTO के पास रजिस्टर्ड हो, ताकि उस स्कूल द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लाइसेंस बनवाने के लिए भी किया जा सके।
ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बताई अंजलि, ड्राइविंग के लिए लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है और बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। और दोस्तों, लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति को ड्राइविंग का टेस्ट भी पास करना होता है, खास तौर पर उस वाहन के लिए जिसके लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है। किसी भी लाइसेंस को बनवाते समय व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए।
दोस्तों वैसे तो ड्राइवर बनने के लिए किसी औपचारिक शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ड्राइवर के लिए ये जरूरी है कि उसे सभी रास्तों की जानकारी हो और वो सड़क पर लिखे निर्देशों को पढ़ सके।
और श्रोताओं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ड्राइवर के लिए जरूरी है कि गाड़ी चलाते समय उसके पास लाइसेंस की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी अवश्य हो।
दोस्तों लाइसेंस वाहन के अनुसार दिया जाता है, यानी स्कूटर, ऑटो रिक्शा या कार के लिए लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV ड्राइविंग लाइसेंस, और बस, ट्रक, क्रेन इत्यादि के लिए हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV लाइसेंस।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास HMV लाइसेंस है वो उस लाइसेंस को हल्के वाहन चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस का इस्तेमाल भारी वाहन चलाने के लिए नहीं किया जा सकता।
तो दोस्तों ये थी आज की काम की बात, और अगर आपके मन में और कोई सवाल है या आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल तुरंत हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782 3। दोस्तों अब खत्म हुआ आपका इंतजार,
क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको उन विजेता का नाम
जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभवों के जरिए जीत लिया है हमारा दिल
और साथ ही आज का इनाम भी।
तो अंजलि मैडम, आज किसकी चिट्ठी पढ़ने वाली हैं आप?
आज मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ कमल भट्ट जी की। ये लिखते हैं कि मैं कमल भट्ट ग्राम बांडा पट्टी गुसाई धौलधार टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ और वर्तमान में मेरठ में कार्यरत हूँ। सबसे पहले जब मैं गांव से अपने जीजा जी के साथ मेरठ गया तो एक कपड़े की दुकान में 300 रुपए में काम करना शुरू किया। इसके बाद मैं धीरे धीरे मन लगाकर काम करता रहा और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक उत्तराखंडी प्रवासी संगठनों से जुड़ता रहा। अपनी मेहनत व लगन से आज मैं टेक्सटाइल मिल में सुपरवाइजर हूँ। मेरे जीवन का सबसे खास अनुभव जो है उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक बार मेरठ से अपने गांव साले की शादी में जा रहा था। अटैची में मैंने 10,000 रुपए रखे और बस में बैठ गया। मैं पूरी तरह से सतर्क था क्योंकि बस में चोरी व ठगी की घटनाएं हो जाती हैं। जब मैं गांव पहुंचा तो अटैची धर्म पत्नी जी को दे दी। उन्होंने वैसी की वैसी अलमारी में रख दी। दूसरे दिन साले को जैसे ही मैं पैसे देने लगा तो हक्का बक्का रह गया, नोट अटैची से गायब थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा इतना ध्यान रखने पर भी कैसे ये घटना मेरे साथ घट गई। समझ में नहीं आया कि ठगों ने अटैची का लॉक कब तोड़ा और पैसा कब लूट लिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सफर में हो तो सतर्क और चौकस रहें।
भाई कमल भट्टी जी, हमें उम्मीद है कि हमारे प्रवासी श्रोता आपकी सलाह का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, कमल जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
और दोस्तों, अब सुनते हैं आज के संदेश।
मैं गोविंद सिंह रावत, ग्राम बनेज, पोस्ट मतकंडी, जनपद रुद्रप्रयाग का मूल निवासी हूँ। मैं अपने चाचा श्री पूरण सिंह रावत, रानी सस्ती चौरा, मध्य प्रदेश के लिए यह सूचना भेज रहा हूँ। मेरा फोन नंबर 9410115525 पे मुझे फोन कीजिए कि मैं घर में पूरा परिवार सहित भगवती के पास पाठ करने के लिए आ रहा हूँ। तो आप कब तक आ रहे हैं, इस नंबर पर मुझे शीघ्र फोन कीजिए।
मेरा नाम संता देवी, ग्राम पिंगलपाणी, जिला रुद्रप्रयाग, मेरा लौड़ा ना मोहन किन्नौर रोम सतरे बारियन दे होना के लोगों से ना जला कम बेटे ने बहुत सारे से मिलने मैं तो साल से नहीं मिली लोग तो सब सुने मिले जो चगड़ी चगड़ी से नाम सुना दिया कहीं से ना कन पर कन क्या मैं सोच मैं सो गौर मर ऑल तो जर साम जानकार तो सुखा कि ऑल जाल के मैं बोलो हम से तो थे भी नहीं हूँ कन के चार साल हो गए टीन शर्ट है बस कई बार कुरवादन में दुख भी हुआ कन क्या बहुत दुख वही ये बातों में घर में अभी लोहड़ी बने जाए कि मैं बोली स्कूल जाना है सर अब मैं से तथा गुंजे सोने भी नहीं था तो भी दिया जानता है खेल मैं नहीं खेल प्रताप सर ले भी दिया कि
मैं मैसूर से हूँ मेरे स्वार पिंगला पानी थी कि मैं तो मेरे मजगिन थी भेजी तेरे बार दिवण छो भेज नौ राकेश थी कि नोएडा रोना छो मैं मैं फोन मैं भी जाइन छो तो फोन भी सब ठीक छिन पिता भी हाथ पीड़ा रोन होनी ये ठीक रोन कदर आप घर फोन भी ठीक छिन ना लो कब टेंशन से अजल भी जाना रोन पर तेन में ले जा रोन बाट रखे कहता
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संदेश।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो अपना नाम और पता तुरंत हमारे नंबर पर एसएमएस कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप उसे हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए। और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं, तो उसकी गतिविधियों की जानकारियों को भी आप अभी चिट्ठियों के जरिए भेज सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भणज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करते हैं।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियाँ जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।